परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे भी प्रदान किया कि इस प्रकार आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपको बता सकूं, समझा सकूं और स्थानीय कलीसिया का और परमेश्वर के दास भाई नेल्सन थॉमस का भी मैं आभारी हूं। आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख बांट सकूं। और जैसा प्रभु के दास ने बताया, यह प्रभु का संदेश है, इसे बड़े प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक और उत्साह पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बुलाया, मैंने उनसे पूछा क्या सब्जेक्ट आपके विचार में है, कोई ऐसा खास विषय है क्या? तब उन्होंने कहा ऐसा कोई खास विषय नहीं है, जैसे प्रभु आपकी अगुवाई करे वैसे आप संदेश दीजिए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने कुछ बातें जो मेरे मन में रखी उसको मैं आपके सम्मुख इन दिनों में रखूंगा। और प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के वचन को सुने ताकि प्रभु का वचन सुनकर हम आशीष और अनुग्रह पा सके। और मेरे कलीसिया जहाँ हमारे कलीसिया जोधपुर में है, राजस्थान में, वहां पर मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं तीन तरह से सुनना बहुत जरूरी है, प्रार्थना पूर्वक, ध्यान पूर्वक और उत्साह पूर्वक सुनना चाहिए। प्रार्थना पूर्वक इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु जी मुझे सुनने वाले कान और मानने वाला हृदय दीजिए। हो सकता है जैसे प्रभु के दास ने कहा, कान तो हमारे यहां है लेकिन वो लॉक पड़े हैं, बंद पड़ा है, लेकिन खुला रखना है, परमेश्वर का वचन सुनना है और जो सुनते हैं उसको अपने व्यवहारिक जीवन में डालना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जमा होते हैं, हम बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत उत्साह के साथ गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने का समय आता है तब आसपास की बातों में ध्यान भटकने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से ग्रहण करना, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, मन लगाकर पूरी एकाग्रता के साथ पूरे ध्यान के साथ उसको सुनना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, उत्साह पूर्वक। जब परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, हम गीत गाते हैं और अगर कोई पसंद का गीत हम बोल दें तो कभी ताली बजाकर गाते हैं, जोर से गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब सुनने की बात आती है ना, धीरे धीरे इधर डोलते हैं, इधर डोलते हैं, इधर उधर मन भटकने लगता है। शैतान कोशिश करता है वचन को ध्यान से नहीं सुनना। शैतान मन में विचार लाता है, अयो कल ऑफिस में जाना है, हाँ तो भी कौन वो करना, एक कल क्या हुआ था, शाम को क्या होगा, सारा बातें शैतान मन में लेकर आएगा। लेकिन उत्साह पूर्वक सबको दूर किनार रखकर प्रभु का वचन ध्यान से प्रार्थना पूर्वक जब हम सुनते हैं, परमेश्वर हमें जीवन में आशीष देता है। इसलिए इन दिनों में जब हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार अध्ययन करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करे। और इसके पहले कि मैं विषय पर आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से हमें क्या आशीष मिलती है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार दिन भर या शाम भर बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनने से हमें क्या आशीष मिलती है, जल्दी से आपको बताकर फिर मैं अपने मुख्य विषय पर आना चाहता हूं। बड़ी मेहरबानी से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्स 1 एंड 2। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय 1 और 2 पद मेहरबानी से पढ़ें।
जैसे कि हरी घास और पौधे पर,
बस इतना बहुत। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हे आकाश सुनो, हे पृथ्वी सुनो, मैं बोलूंगा और जब मैं बोलूंगा मेरा वचन कैसा होगा? घास पर ओस के समान है, मेघ पर मेघ के समान, ओस के समान परमेश्वर का वचन होता है। तो पहली आशीष जो परमेश्वर के वचन सुनने से हमें मिलता है वो यह है, वी आर रिफ्रेश्ड स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से हम तरोताजा हो जाते हैं। सुबह सुबह जब हम बाहर जाकर देखते हैं, अगर हमारे घर में बगीचा है, हम देखते हैं पत्तियों पर, पौधों के पत्तियों पर ओस की बूंदे लगी गिरी रहती, बिल्कुल साफ स्वच्छ, ऐसा लगता है पेड़ पौधों को देखकर ही हमारे आंखों में एक ताजगी आ जाती है। सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं और हम दांत मंजन करते हैं, मुंह धोते हैं, नहा धोकर बाहर निकलते हैं, आह अच्छा ताजगी महसूस करते हैं। लेकिन जब तक नाना धोना नहीं होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, लेकिन नहाने धोने के बाद हो एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, वही परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से होता है। तो इन दिनों में जब परमेश्वर का वचन जब हम अध्ययन करेंगे, आत्मिक रीति से हम तरोताजा हो जाएंगे, विल बी रिफ्रेश्ड, एक ताजगी। हमारे आत्मिक जीवन बिताते बिताते कभी थकावट होती है, कभी परेशानी होती है, कभी दिक्कत जाती है, लेकिन इस प्रकार के अध्ययन से हमारे आत्मिक जीवन में हमें ताजगी का अनुभव होता है, ताजगी का एहसास हमारे जीवन में होता है। दूसरी बात, दूसरी आशीष जो इस प्रकार का अध्ययन करने से हमें प्राप्त होती है, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद, जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 और 32 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, प्रभु यहूदियों से बात कर रहा है, और कौन से यहूदियों से बात कर रहा है? जिन्होंने उस पर विश्वास किया। सारे यहूदियों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, कुछ यहूदियों ने प्रभु पर विश्वास किया, और जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उन यहूदियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, हम सच्चाई को जानते हैं, असत्य को छोड़कर सत्य की ओर हम बढ़ते हैं, सच्चाई को जानते हैं। जब तक परमेश्वर का वचन अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक मानो आंखों के सामने एक पर्दा सा रहता है, सच्चाई का एहसास नहीं होता। आपको मालूम है ना, पुराने नियम में हम सुलेमान राजा के बारे में पढ़ते हैं, शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि के बारे में सुना, शीबा की रानी ने सुलेमान के धन दौलत के बारे में सुना, उसको जाकर देखने का विचार किया, और जाकर जब सब कुछ देखा, शीबा रानी ने क्या कहा? इसका आधा भी मुझे नहीं पता था, अब तो मुझे मालूम पड़ गया, ओ सच्चाई ये है। अच्छा, इस प्रकार का अनुभव होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, कई गलत बातों को जीवन से हटाकर सही बातों को जीवन में हम लेकर आते हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में दो शब्द हैं, एक को हम बोलते हैं टू लर्न, लर्न मतलब सीखना, समझना. दूसरा एक और शब्द है इसके ऑपोजिट, टू अनलर्न, मतलब जो गलत सीखा उसको सुधार कर सही सीखना. और हमारे एक्सपीरियंस लोग बताते हैं सीखना आसान है, लेकिन जो गलत सीखा उसको हटाकर सही बात सीखना बहुत मुश्किल. अभी हम गीत गाते हैं, अलग अलग असेंबली में सब अलग अलग धुन चलता है, एक ही गीत है, लेकिन 10 असेंबली में जाओगे तो 10 धुन आपको सुनाई देगी. लेकिन अगर गलत धुन मैंने सीख लिया तो वो गलत धुन छोड़कर सही ट्यून, सही धुन सीखना बहुत मुश्किल. एक बार गाऊंगा, दो बार गाऊंगा, लेकिन तीसरे बार आपके बिना मैं गाऊंगा तो वापस गलत धुन में ही गाऊंगा. तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरा स्पर्श, कभी कभी एक तीसरा स्पर्श, कभी कभी एक चौथा स्पर्श हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं, सच्चाई को सीखते हैं. सच्चाई को सीखने के बाद सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा आशीष, सच्चा अनुग्रह हमें प्राप्त होकर प्रभु की महिमा के लिए हम अपना जीवन बिता सकते हैं. एक और तीसरी आशीष, दूसरा तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद, 2 तिमोथियुस 3:16-17, दूसरा तिमोथियुस 3. यहाँ पर जो तीसरी आशीष परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से हमें प्राप्त होती है वो यह है, वी आर बेटर इक्विप्ड, सही निपुणता, सही प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है. देखिए जो शब्द है डॉक्ट्रिन, वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है. वो लैटिन शब्द है डॉक्ट्राइना, मतलब उसी शब्द से डॉक्टर वर्ड भी आता है. और डॉक्टर क्या करता है, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को सुधारता है. जब मुझे बुखार हो जाता है, जब मेरे जीवन में इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में है कोई परेशानी हो जाती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मेरे जीवन को सुधारता है, दवाई देता है, मेरे जीवन को अच्छा करता है. उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब हम सीखते हैं, परमेश्वर का वचन सीखकर हम और निपुण हो जाते हैं. ओ प्रभु जी, मुझे इस प्रकार जीना चाहिए संसार में, आज मालूम पड़ा, हाँ प्रभु जी अब से मैं ऐसे जीऊंगा, पहले मैं ऐसे जीता था, मैं निपुण नहीं था, मैं सशक्त नहीं था, अब मुझे मालूम पड़ा मुझे ऐसे सीखना चाहिए. परमेश्वर का वचन क्या है, एक धोधारी तलवार है, और तलवार को कैसे चलाना चाहिए हमें आना चाहिए. आपको मालूम है पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजकों की टोली जब आई थी, है पतरस ने एक का कान काटने के लिए, एक को है गर्दन काटने के लिए चला, लेकिन पतरस ने तलवार कैसे चलाया, है ऐसे ऊपर से नीचे चलाया, इसलिए उसका कान कट गया. वैसे तलवार कैसे चलाते हैं, है ऐसे चलाना चाहिए, आता नहीं क्यों, वो पतरस ऐसे ऐसे ही काटता था, क्या काटता था, मछली काटता था. तो वो सोचे ये भी मछली काटे जैसे ऐसे काटूंगा तो गर्दन कट जाएगी, लेकिन नहीं, उसको पता नहीं था. लेकिन प्रभु ने उसका कान पे हाथ रखकर उसको अच्छा किया, और पतरस से कहा पतरस ऐसा मत कर, आना चाहिए परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का वचन सीखकर, परमेश्वर का वचन समझकर, कैसे जीना, कैसे समझना, कैसे जीवन में व्यवहार करना, हाउ टू बी बेटर इक्विप्ड, कैसे निपुणता के साथ, कैसे कुशलता के साथ जीवन बिताना, ये सब परमेश्वर का वचन अध्ययन करने से ही हमें प्राप्त होता है. इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं, आत्मिक ताजगी महसूस करते हैं, और स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्रता हम महसूस करते हैं, और निपुण हम बनकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हम करते हैं. इसलिए इन दिनों में जब परमेश्वर का वचन हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करें, प्रार्थना पूर्वक, उत्साह पूर्वक और ध्यान पूर्वक हम प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके. एक पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और उस विषय पर आज दिन भर के लिए जो 4 बजे तक का वक्त है, उस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 37 पद। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 37। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 37 पद। रोमियो 8 अध्याय उसका 37 पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। जयवन से भी बढ़कर है, यह है मेरा विषय जो आज दिन भर मैं आपके साथ लूंगा। तो पौलुस कहता है आपके और मेरे और अपने जीवन को भी शामिल करके कि बहुत सारी बातें हमारे विपरीत में हैं। जब हम आत्मिक जीवन इस दुनिया में बिताते हैं बहुत सारी बातें हमारे संघर्ष की हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन के विपरीत हैं, लेकिन यीशु मसीह में आप और मैं हम कौन है? जयवंत से भी बढ़कर। प्रभु यीशु मसीह में, इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी आर मोर देन कॉन्करर्स। प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत से बढ़कर मतलब क्या है? जयवंत से बढ़कर मतलब हम उन लोगों से भी ज्यादा बढ़कर हैं जो लोग लड़ाई कर जय पाते हैं तो कितनी खुशी होती है। आजकल लड़ाई का जमाना तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा चित्रण क्रिकेट मैदान में देखने को मिलता है, और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बोलना ही नहीं। इंडिया जीत गई तो यहां पर तो कहा तो बॉम्बे का, आपका बॉम्बे का हाल तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमारे राजस्थान में इंडिया जीत जाती है तो लोग पटाखे फोड़ते। अरे बाबा तुमको कितना पैसा मिला पटाखा फोड़ने के लिए? वो सचिन तेंदुलकर पटाखा फोड़ेगा तो समझ में आता, उसको पैसा देते हैं भारत सरकार है बाय क्रिकेट बोर्ड। लेकिन इधर इधर मेरा पड़ोसी पटाखा फोड़ रहा है, क्यों? वो जीत गया, इतना खुशी इतना आनंद, ओ इंडिया जीत गया। आप और मैं हम कौन है? मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर है। ऐसी खुशी, ऐसा आनंद, जीवन का ऐसा, ऐसी संतुष्टि, ऐसी पूर्णता, ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक सिलसिला है जीवन का जो जयवन से भी बढ़कर है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में अपने शिष्यों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। कितने कितने खुशनसीब लोग हैं, कितने सौभाग्यशाली लोग हम हैं, हमको परमेश्वर ने चुना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना और हमें अपना संतान बनाया, और इस दुनिया में केवल संतान बनाकर नहीं रखा है लेकिन जयवंत से भी बढ़कर जीने के लिए हमें प्रभु ने इस संसार में रखा है। हमें प्रभु ने चुना है, चुनकर अपने समीप आकर जयवंत से भी बढ़कर जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। चुनना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है, हम सब जानते हैं। अगर मैं आपके सामने दो पेन रखूं और कहूं ब्रदर कोई भी एक पेन आप चुन लीजिए, आप कौन सा पेन चुनेंगे? जो अच्छा है वो चुन। प्रभु ने हमें क्या किया है? चुना है। क्यों? हम अच्छे थे, हम दूसरों से बढ़कर थे, हम दूसरों से धार्मिक थे, फिर भी प्रभु ने हमें चुना। इसके लिए हमें कितना प्रभु का आभार मानना चाहिए, कितना प्रभु का धन्यवाद मानना चाहिए। प्रभु जी अयोग्य होने के बावजूद, असमर्थ होने के बावजूद, पापी होने के बावजूद आपने मुझे चुन लिया है आपने मुझे, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। और चुना क्यों? जयवंत से भी बढ़कर रहने के लिए। एक पुरानी कहानी है, मैंने मुझे नहीं मालूम आपने सुना है कि नहीं है। एक मोहल्ले में कुछ बच्चे साथ खेलते रहते थे, हर दिन शाम को छोटी छोटी लड़कियां आपस में खेलती थी, घर पास पास के घर के कुछ लड़कियां साथ साथ में खेलती थी। तो एक दिन दो लड़कियों के बीच में लड़ाई हो गया, दो लड़की के बीच में लड़ाई हो गया। तो एक लड़की ने दूसरी लड़की को बोला, तू तो ऐसी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को तो खेलना भी नहीं आता, तेरे को तो कुछ भी करना नहीं आता, और लास्ट में क्या बोला मालूम है? तेरे को तो घर में जन्म लेना भी नहीं आता, तेरे को तो तेरे मां बाप ने गोद लिया। गोद लिया का मतलब समझते ना, अडॉप्टेड। मतलब तेरे माँ बाप को कोई बच्चा नहीं था, तेरे माँ बाप ने तेरे को गोद लिया है, तेरे को तो कुछ भी नहीं करना आता, तेरे को तो जन्म लेना भी नहीं आता, तू तो अभागी है, ऐसा बोल के उसको डांट दिया। उस दिन पहली बार इस बच्ची को मालूम पड़ा कि मैं अपने माँ बाप की सच्ची बेटी नहीं हूं, मैं एक सौतेली बेटी हूं, गोद ली हुई बेटी हूं। फूट कर रोने लगी, सीधे अपने घर में अपने माँ के पास गई। मैंने माँ की आंख में देखकर कहा, माँ मेरी आंख में देखकर बताना सच सच, मैं तेरी सच्ची बेटी हूं या सौतेली बेटी। इसके माँ का दिल भी टूट गया, बोला बेटी बैठ मैं तेरे को समझाती। और इसकी माँ ने उसको समझाया, बेटा हमको एक सुंदर बेटी चाहिए थी, हमने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया, हमको एक बहुत सुंदर बेटी चाहिए थी, परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, हमने बहुत परिश्रम किया इसके लिए, बहुत जगहों पर हम गए, बहुत हॉस्पिटल्स में हम गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हम गए, बहुत सारे जगहों पर हम गए, बहुत सारे दूर दूर स्थानों में हमने यात्रा किया, बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे लड़कियों को देखा, और बहुत सारे जगहों में जाकर बहुत सारे लड़कियों को देखकर, बहुत सारे बच्चों को देखकर सबसे सुंदर लड़की को हमने चुना, और वो कौन है? वो तू है। इसलिए तेरे को घबराने की जरूरत नहीं, तू अच्छी है, तू सबसे अच्छी है, तू सबसे सुंदर है, इसलिए हमने तुझे चुना है बेटा। वो बेटी बहुत खुश हो गई, वो बेटी बहुत आनंदित हो गई। अगले दिन शाम को फिर गई खेलने, और उसको वो याद आया दूसरी सहेली ने जिसने लड़ाई किया था उसके साथ, जाकर पहले सोचा मैं उसके साथ हिसाब किताब बराबर करूं। वो गई और बोला, क्यों तूने मेरे को कल क्या बोला था कि मैं अभागी हूं, मेरे को तो जन्म लेना भी नहीं आता, तेरे को सच्चाई नहीं मालूम, मैं तेरे को सच्चाई बताती हूं, मेरे माँ बाप को एक बेटी चाहिए थी, मेरे माँ बाप सारे दुनिया में गए, अलग अलग स्थानों में गए, अलग अलग जगह में गए, अलग अलग बच्चों को देखा, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा, उसमें से सबसे सुंदर को चुना, और वो सबसे सुंदर कौन है? वो सबसे सुंदर मैं हूं, इसलिए अभागी मैं नहीं, अभागी तो तू और तेरे माँ बाप है, तेरे माँ बाप को जो मिला वो लेना पड़ा, लेकिन मेरे माँ बाप ने चुन कर लिया है, इसलिए मैं कौन हूं? मैं अच्छी हूं, और तू कौन है? तू अभागी। अजीज मित्रों विश्वासियों, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें चुनकर अपने पास लेकर आया, क्यों? ताकि हम उसके संतान बने, और उससे भी बढ़कर जयवंत होकर, जयवंत से भी बढ़कर इस दुनिया में हम अपना जीवन बिताएं। इस दुनिया में कई विश्वासी हैं, इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, लेकिन कईयों का जीवन थका हुआ है, कईयों का जीवन हारा हुआ एक जीवन है, कईयों का जीवन एक पराजित जीवन है, कईयों का जीवन एक पिछड़ेपन की अवस्था में है। लेकिन आज इन दिनों में हम अपने आप के जीवन को जांचें, हमारा जीवन कैसा है? प्रभु जी अगर हमारा जीवन भी ऐसा एक जीवन है, तो हम प्रार्थना करें, प्रभु जी आज मुझे भी एक जयवंत जीवन बता दीजिए, जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए एक नए अंदाज में, एक नए परिभाषा में, एक नए एहसास में प्रभु जी जीवन बिताने के लिए आप मुझे भी सहायता कीजिए, जयवंत से भी बढ़कर, मोर देन कॉन्करर्स। आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे हमें किन किन विषयों पर, किन किन बातों पर हमें जय पाना है, और कैसे हम उन बातों पर जय पा सकते हैं, और इन बातों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, वास्तव में जयवंत जीवन हम बिता सकते हैं, जयवंत मसीही लोग हम बन सकते हैं। आपको मालूम है आपके और मेरे मसीह होने से शैतान ज्यादा परेशान नहीं होता, लेकिन आपके और मेरे जब आप और मैं जयवंत मसीही जीवन बिताते हैं, तब शैतान थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तब शैतान थोड़ा सा घबरा जाता है। जब शैतान देखता है मैं घर में बैठा हूं, मैं घर बैठ के बाइबल पढ़ता हूं, कभी कभी महीने में एक बार असेंबली चला जाता हूं, कभी कभी कुछ कर देता हूं, तब शैतान को कोई परेशानी। लेकिन जब शैतान देखता है मैं बहुत ही प्रभु के लिए एक आग जीवन में रखकर घूमता हूं, प्रभु के लिए जयवंत से भी बढ़कर मैं अपना जीवन बिताता हूं, सब शैतान थोड़ा घबराने लगता है। इसलिए हम अपने आप के जीवन को जांचें। अगर आज हम जयवंत जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने आप को परखें, जांचें, और प्रभु हमारा एक ऐसा प्रभु है जिसके पास कभी कोई व्यक्ति हार कर नहीं, हार कर प्रभु को हार के हारने के बाद भी जब प्रभु को अपना जीवन समर्पित करता है, प्रभु से लेता है, आशीष देता है और जयवंत से भी बढ़कर जीने का अनुभव उसके जीवन में देता है। इसलिए हम देखेंगे किन किन बातों पर हमें जय पाना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहला यूहन्ना के पत्री 2:15, 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। 1 John 2:15, 16 and 17। पहला यूहन्ना की पत्री 2:15, 16 और 17 पद।
संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसने पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा।
यहाँ पर पहला क्षेत्र जिस पर आपको और मुझे जय पाना है वो यह है, वी मस्ट ओवरकम द वर्ल्ड। हमें संसार पर जय पाना, इस दुनिया के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। प्रेरित योहन्ना यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होते हुए लिखता है, संसार और संसार की बातों से प्रेम मत कर, लेकिन संसार के ऊपर जय पाकर, संसार के ऊपर विजय पाकर जीवन बिताना, एक विश्वासी को आत्मिक जीवन बिताना बहुत जरूरी है। संसार के ऊपर जय क्यों पाना, यहाँ पर यही पर एक कारण भी योहन्ना देता है। पहला कारण वो लिखता है कि अगर हम इस संसार से प्रेम करेंगे तब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही शिक्षा मत्ती रचित सुसमाचार में दिया, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो एक से प्रेम करोगे या दूसरे से घृणा करोगे, दोनों को साथ में तुम लेकर नहीं चल सकते। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में ऐसा है, यदि हम संसार से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकेंगे, अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो संसार से हम प्रेम नहीं करेंगे। आज हमें अपने आप को जांचना परखना, हम किससे प्रेम करते हैं। कई बार हम ऐसा डबल माइंडेड में हम फंस जाते हैं, दोहरेपन में है, दुविधा में हम फंस जाते हैं। प्रभु ब्रदर थोड़ा चर्च भी चाहिए, थोड़ा संसार भी, थोड़ा दुनिया भी चाहिए, थोड़ा प्रभु भी चाहिए। ऐसे दोनों नाव में अगर पांव रख के जाएंगे तो क्या होगा, ना तो प्रभु मिलेगा ना चर्च मिलेगा, ना उधर की आशीष मिलेगी ना इधर की आशीष मिलेगी। इसलिए यदि हमें जयवंत जीवन बिताना है, यदि हमें जयवंत आत्मिक जीवन बिताना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करते हुए संसार से बैर रखना है, संसार पर जय पाना है। संसार पर जय इसलिए पाना है क्योंकि अगर संसार पर से हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन इसके विपरीत जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहेगा तो संसार के लिए कोई प्रेम, संसार के लिए कोई मोहब्बत हमारे जीवन में नहीं रहेगी। दूसरा कारण, संसार से हमें प्रेम क्यों नहीं करना, संसार से हमें प्रेम इसलिए नहीं करना क्योंकि इस संसार में पाप और अधर्म भरा पड़ा है। इस संसार में पाप और अधर्म और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप और मैं, हम कौन है, हम यीशु मसीह में पवित्र लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के खून से साफ किए हुए और पवित्र लोग हैं। अब हम पाप के अधीनता में नहीं, पाप के ऊपर, पाप पर हावी होकर जीवन बिताने वाले लोग हैं। इसलिए अब हम पापी दुनिया से प्रेम करके जीवन नहीं बिता सकते। अगर अभी हम पाप से प्रेम करते हैं, अगर अभी हम दुनिया से प्रेम करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वास्तव में प्रभु को जाना नहीं है, वास्तव में प्रभु से प्रेम करते नहीं है, क्योंकि वास्तव में अगर प्रभु से प्रेम करेंगे तो दुनिया में रहेंगे तो सही, लेकिन दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 में उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जा और फिर पाप मत कर। तू जा, उसी गली में जा, उसी मकान में जा, उसी सड़क में जा, उसी मोहल्ले में जा, लेकिन एक परिवर्तन के साथ, एक बदलाव के साथ। अब पाप मत करना, निष्पाप होकर बिना पाप के जीवन बिताना। क्यों? क्यों, अब तू पवित्र है, तेरे को मैंने माफ किया है, अब तू माफ किया हुआ, माफी प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है, इसलिए जा अब फिर पाप मत करना। मेरे नाना जी के बारे में जिक्र किया इन्होंने, वो हमेशा एक ऐसा उदाहरण देते थे, विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में कितना बड़ा फर्क है। ये विश्वासी लोग दुनिया और दुनिया के पाप से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन अविश्वासी लोग दुनिया और दुनिया के पाप में ही पड़े रहते हैं। इस प्रकार एक उदाहरण वो देते थे, एक सुअर का बच्चा और एक बकरी का बच्चा, बराबर, एक सुअर का बच्चा और एक बकरी का बच्चा, दोनों एक ही हम उम्र के हैं, एक ही एज के हैं, एक दिन पुराने, कल कल ही जन्म हुआ। और ये जानवर के बच्चे ऐसे होते हैं, एक दिन में ही कूदने फांदने लग जाते हैं, है ना। तो संयोग से भाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए, दोनों दोस्त हो गए, कौन, सुअर का बच्चा और बकरी का बच्चा, दोनों दोस्त हो गए, दोनों साथ जाते हैं, मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, अपना समय बिता रहे हैं, और घूमते घूमते चलते चलते एक पतला एक ब्रिज को देखते हैं। ब्रिज के उस तरफ बहुत सुंदर घास है, एक छोटा सा नदी है, साफ पानी बह रहा है, बहुत सुंदर जगह है, पुल के उस तरफ बहुत सुंदर जगह है, लेकिन पुल के नीचे गंदगी, गंदा नाला है, पूरे शहर की गंदगी और बर्बादी वहां से नीचे से बह रही। दोनों को उस पार जाना है। सबसे पहले सुअर का बच्चा बकरी के बच्चे से बोलता है, यार ध्यान से चलना, ध्यान से चलना, नहीं तो कहां गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो बकरी का बच्चा वापस सुअर के बच्चे से बोलता है, यार देख मैं तो ध्यान से चलूंगा, तू भी ध्यान से चलना, हाँ नहीं तो तू कहां गिरेगा, और हाँ यार नीचे गिर जाऊंगा, बहुत डर लगता है, इसलिए ध्यान से चल। तो दोनों ध्यान से चलते, पतला सा पुल है, दोनों ध्यान से चलते, कितने दिन पुराने हैं, उनकी उम्र कितनी है, एक दिन, कितना चलेंगे ध्यान से, कितना चलेंगे ध्यान से, आधा पुल पार करने के बाद वो अटकना मटकना शुरू कर दे, कूदना फांदना शुरू कर दे, कूदते कूदते क्या होता है, दोनों के दोनों नीचे, नीचे क्या है, गंदगी, बदबू है, सराहट, गंदगी। अब नीचे दोनों, सुअर का बच्चा बकरी का बच्चा, दोनों नीचे गिरने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, थोड़ा सोच कर देखो। बकरी का बच्चा क्या करेगा, मैं मानो उसके मुंह में अगर जुबान होती आपके और मेरे जैसा, वो कहता, यो कोई मुझे उठा लो यहां से, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी गंदगी है, बड़ी परेशानी है, अरे मेरे को तो दम घुट रहा है, अरे मेरे को उठा लो, कोई उठा लो, मैं करके रोएगा बकरी का बच्चा। सुअर का बच्चा, दुनिया में ऐसा भी स्वर्ग है, मेरे माँ बाप भी नालायक, इनको मेरे माँ बाप ने बताया नहीं, इतनी सुंदर जगह है इस दुनिया में, ओह कोई नहीं आना पास में, मेरे पास में कोई नहीं आना, मेरे को यही रहना है, मेरे को यही जीना है, मेरे को यही मरना है। विश्वासी और अविश्वासी के बीच में यह फर्क है। विश्वासी बकरी के बच्चे के जैसे पाप में, पापी दुनिया में जब रहता है, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता है, प्रभु जी मुझे बचाना, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या पाप है, या अधर्म है, या गंदगी है, या बदबू है, प्रभु जी मुझे अपने पास रखना, पवित्रता में बनाए रखना, मैं संसार से प्रेम नहीं कर रहा हूं प्रभु जी, मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु जी, आपके नजदीकी में मुझे बनाए रखना। लेकिन अविश्वासी, दुनिया है, क्या दुनिया है, आप और मैं कौन है, हम विश्वासी, हमें बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ दुनिया से बैर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हुए जीना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में पाप है, अधर्म है। और एक और कारण, क्यों दुनिया से हमें प्रेम नहीं करना है, दुनिया से हमें प्रेम इसलिए नहीं करना है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ए टेम्पररी वर्ल्ड, ये दुनिया एक क्षणिक दुनिया है, एक तात्कालीन दुनिया है, ये हमेशा का स्थिर रहने वाला नगर नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। आप और मैं, हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं, हमें हमेशा इस दुनिया से प्रेम करते हुए हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें दुनिया से बैर करके दुनिया पर जय पाकर हमें जीवन बिताना बहुत जरूरी है। और इस दुनिया पर हम कैसे जय पा सकते हैं, दुनिया दुनिया को हम कहते दुनिया पर दुनिया पे दुनिया इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं मसीही जीवन जयवंत से भी बढ़कर हम कैसे जी सकते हैं। कुछ बातों को मैं उसी पत्री में से आपको बताऊंगा, बड़े मेहरबानी से पहला यूहन्ना 5:4-5 पर, 1 John 5:4-5 क्या लिखा है,
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है कि यह है हमारा विश्वास, और वो कौन है जो संसार पर विजय होता है सिवाय उसको उसके जो यह विश्वास करता है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है।
यहाँ पर हम देखते हैं संसार पर हम कैसे जय पा सकते, संसार पर हम जयवंत कैसे बन सकते। पहली बात, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर एक जीवित विश्वास रखना। एक बार तो हमने प्रभु पर विश्वास किया, जब हम पापी अवस्था में प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे मन में आता है, हमें अपना संतान बनाता है, हर स्वर्गीय आशीषों से हमें भरपूर करता है, लेकिन उसके बाद भी प्रतिदिन प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रतिदिन प्रभु पर विश्वास रखकर, प्रतिदिन प्रभु के भरोसे अपना जीवन बिताना बहुत। जब तक परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह पर हर दिन विश्वास करके हम नहीं जीवन बिताएंगे, तब तक इस संसार पर आप और मैं जय नहीं पा सकते। ये दुनिया बहुत शक्तिशाली है, इस दुनिया में बहुत आकर्षण है, इस दुनिया में बहुत खींचतान है, इस दुनिया में रंग बिरंगे हसीन चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और ऐसे बुरे दुनिया में जब तक हर पल हर क्षण प्रभु पर विश्वास करते हुए भरोसा रखते हुए जब तक हम जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक इस दुनिया में हम जय, हमारा विश्वास हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर होना बहुत। मुझे नहीं मालूम आपने 3 अरबी लोगों की कहानी सुनी कि नहीं, अरब सऊदी अरब में 3 अरबी लोग, सऊदी अरब में बहुत अरबी लोग हैं, लेकिन खास एक 3 अरबी दोस्त साथ में रहते थे, उनको देखने के लिए उनका एक इंग्लैंड का दोस्त सऊदी अरब में आया, इंग्लैंड का दोस्त एक विदेशी अंग्रेज आदमी इनको अरबी अपने अरबी दोस्तों को देखने के लिए सऊदी अरेबिया, तो उसने सब सऊदी अरेबिया देखा, इन 3 लोगों के साथ रहा और उसको बहुत अच्छा लगा। 3 दिन के बाद वो वापस जब इंग्लैंड जा रहा था, उसने कहा प्लीज कम टू इंग्लैंड, आप तीनों इंग्लैंड आना, खत्म, इंग्लैंड कभी आए हो क्या, नो 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 ऐसा बोला, कम टू इंग्लैंड, तुम इंग्लैंड आना, हाँ जरूर आए, कब आए, बोले अगले साल तुम इंग्लैंड आना। तो एक साल बीत गया, ये तीनों अरबी लोग कहां गए, इंग्लैंड लंदन, लंदन पहुंच, लंदन पहुंच के देखा क्या बिल्डिंग, रेत नाम चीज ही सऊदी अरेबिया में क्या है, पूरा रेत मिट्टी है, रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सऊदी अरेबिया में, लेकिन इंग्लैंड में लंदन में मिट्टी नहीं, सब पक्का सड़क चौड़ी, इतनी सारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत अच्छा। लेकिन 3 दिन के बाद उनको जाने का टाइम आया, जिस दिन जाना था उस दिन शाम को, एक दिन शाम को उनको जाना था, उस दिन सुबह उनके अंग्रेज दोस्त ने उनसे पूछा, यू सॉ लंदन, तुमने लंदन घूम के देखा, बोले लंदन में एक चीज सबसे अच्छी तुमको क्या लगी, तो बोले लंदन में कोई भी पाइप खोलते ही क्या आता है, पानी आता है, ये बहुत अच्छा है, हमारे सऊदी अरेबिया में भी बहुत पाइप है लेकिन एक में भी अच्छा पानी नहीं आता, क्यों, सऊदी अरेबिया रेगिस्तान इलाका है ना, डेजर्ट है, लेकिन लंदन में क्या है, पानी 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 की कोई सीमा, सऊदी अरेबिया में एक बाल्टी पानी में नहाना पड़ता है, यहां पर अरे नल के नीचे बैठ जाओ, फिर एक नल खोलो तो गर्म पानी, एक नल खोलो तो ठंडा पानी, एक नल खोलो तो ऊपर से पानी, एक नल खोलो तो साइड से पानी, अरे बाबा, तो बोले लंदन मतलब पानी, लंदन मीन्स वाटर, बहुत अच्छा लगा। बाकी तो बिल्डिंग्स तो वहां भी है, कार तो वहां भी है, रोड्स तो वहां पर भी है, पाइप्स भी है, लेकिन पानी, तो एक चीज जो लंदन में अरबियों को क्या पसंद आई, लंदन मतलब पानी। अब यूज करो, चित्ता चाहे यूज करो, खूब पानी। उस दिन शाम को जाने का टाइम आया, तीन विद्वानों ने क्या किया मालूम है, दूसरे से कहा यार लंदन के पाइप में पानी आता है, ये पाइप अपन लेके अपन अपना बाथरूम में लगाएंगे तो क्या आएगा, पानी आएगा। तो ये तीनों विद्वानों ने क्या किया, अपना अपना बाथरूम का पाइप खोल के अपना बैग में पैक कर दिया और अंग्रेज को बोला ओके थैंक यू थैंक यू बाय बाय बोल के पहुंच गए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहुंच के अपने सब बाथरूम में नया नया पाइप फिट कर दिया और सब पड़ोसियों को बुलाया, देखो हम लंदन गए। लंदन मतलब क्या मालूम है, नहीं मालूम, लंदन मतलब पानी, लंदन में पानी बहुत है, लंदन का पाइप हम लेकर आए, देखो हम पाइप खोलेंगे तो पानी आएगा, पाइप खोला आया पानी, लंदन का पाइप है ना, क्यों नहीं आया पानी, वो लंदन का पाइप हो या सऊदी का पाइप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ओवरहेड टैंक के साथ जब तक कनेक्शन नहीं है कोई भी पाइप से पानी नहीं। इसी प्रकार आपका और मेरा ओवरहेड टैंक कौन है, प्रभु यीशु, जब तक उसके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन, उसके साथ एक डायरेक्ट भरोसा, उसके साथ एक प्रतिदिन का विश्वास रखकर हम नहीं जिएंगे, कितना भी अच्छा अच्छा टैक्स हमारे जीवन में हम लगा लेंगे कभी भी दुनिया पर हम जय प्राप्त। इसलिए प्रतिदिन प्रभु पर विश्वास, योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रार्थना किया, प्रभु जी तू बढ़े मैं, तू बढ़े मैं घटू, इस प्रार्थना के साथ जब आप और मैं जीवन बिताएंगे तब हम भी इस दुनिया पर जय पा सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर पर विश्वास करना, दूसरी बात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, हैव फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। यह वचन है जो हमें ताकत देता है, यह वचन है जो हमें शक्ति देता है। बड़ी इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद, हिब्रूस चैप्टर 4 वर्स 12, इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद, हिब्रूस 4:12, यहाँ पर परमेश्वर का वचन के बारे में, गाद गाद गूदे गूदे को बार बार छेदने वाला परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चौका, परमेश्वर का वचन, इस पर हमें भरोसा रखना। आपको मालूम है कि नहीं, कई साल पहले, कई सौ साल पहले एक नास्तिक इस दुनिया में रहता था, उसका नाम था वोल्टेयर, वोल्टेयर एथिस्ट, वो एक एथिस्ट था, नास्तिक मतलब जो लोग कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। उसने बाइबल के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी, वो एक लेखक था, वो एक लिटरेचर में काम करने वाला व्यक्ति था, उसने बहुत लेख लिखा। एक बार अपने जीवन के अंतिम कुछ पलों में लास्ट जब उसने से लेख लिखा, वन ऑफ हिज लास्ट आर्टिकल्स, उसके अंतिम लेखों में से एक लेख में उसने लिखा, Another 100 years द बाइबल विल बी इन द ग्रेव। क्या लिखा, 100 साल के अंदर अंदर ये बाइबल अपने कब्र में रहेगी। 100 साल के अंदर अंदर वोल्टेयर मर गया, लेकिन बाइबल आज भी आपके और मेरे हाथों में, ये परमेश्वर का वचन, इसको कोई भी व्यक्ति बर्बाद नहीं कर सकता, ये जीवित है, ये मन के विचारों को जांचता है, ऐसा लिखा है इब्रानियों 4:12, परखता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, मैं नहीं जानता, मेरे विचारों को आप नहीं जानते, लेकिन आपके और मेरे विचारों को कौन जानता है, परमेश्वर का वचन, इस पर विश्वास है। ये वचन जो कहता है उसके अनुसार जीना है, उससे हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, लव गॉड मोर देन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब सर्वोपरि प्रेम हमें परमेश्वर, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोगों ने आकर कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति से प्रेम। और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, अपने परमेश्वर को सबसे बढ़कर सबसे जीवन में सर्वोच्च स्थान देकर प्रेम करना। क्या हम प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर हम प्रभु से सर्व सच्चा प्रेम करते हुए जीवन बिताएंगे दुनिया पर हम जरूर जय। लेकिन परमेश्वर के प्रति अगर हमारा प्रेम सच्चा नहीं है कभी भी आप और मैं दुनिया पर जय नहीं पा सकते, जयवंत जीवन हम नहीं बिता सकते। गीत गाना बहुत आसान है, ईश्वर को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूं कुर्बान, लेकिन जब सब कुछ कुर्बान करने की बात आती है प्रभु जी मैं तो गीत गा रहा था, देने की बात थोड़ी कर रहा था। मालूम है ना, एक चिट्ठी जो जिसने लिखा, एक बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखा, बोले देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए चांद में आशियाना बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं? चांद में आशियाना बना सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए सात समुंदर पार करके जा सकता हूं, तैर तैर के सात समुंदर पार कर। बहुत बड़ी बड़ी बात है, डिंग लिखी है। और लास्ट लाइन क्या है उस लेटर का मालूम है? बुधवार को बारिश नहीं हुई तो तुमको मिलके तुमसे मिलने के लिए मैं चौपाटी में आसमान से तारे तोड़ने जा रहा था, चांद में आशियाना बनाने जा रहा था, सात समुंदर पार करने जा रहा था, एक बारिश से डर गया। कहता है बुधवार को बारिश नहीं हुई तो मैं तेरे से मिलने आऊंगा चौपाटी। कभी कभी आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही, प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरे को टेस्ट करके देख लो प्रभु जी, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, यीशु को मैं सब कुछ देता सब कुछ करता हूं कुर्बान। सच्चा प्रभु कहता है बेटा तेरा जीवन मेरे को दे, तेरी नौकरी मेरे को दे, तेरा परिवार मेरे को दे, तेरा बच्चा मेरे को दे, तेरी तेरी ये चीज मेरे को दे। क्या हम देते हैं? परमेश्वर इब्राहिम से कहा है, अपने इकलौता पुत्र उसका नाम लिया इसहाक, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, मेरे लिए होम बलि करके। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है आवर गॉड इज ए डिमांडिंग गॉड, हमारा परमेश्वर मांगने वाला परमेश्वर है। कई लोग सोचते हमारा परमेश्वर सिर्फ देता है, वो सही बात है, परमेश्वर देता है लेकिन कभी कभी मांगता भी है। और परमेश्वर जब आपसे और मुझसे कुछ मांगे क्या हम देने के लिए तैयार हैं? प्रभु केवल प्रभु के मांग को केवल वे लोग ही पूरा कर सकते हैं जो लोग प्रभु से वास्तव में प्रेम। अजीब विश्वासियों, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? अपने आप को जीवन को जांचे परखें, जयवंत से भी बढ़कर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, दुनिया पर जय पाकर दुनिया पर जयवंत होकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद करे। इस विषय को हम जारी रखेंगे, आगे हम देखेंगे और किन बातों पर हमें जयवंत होना है, लेकिन इससे अभी हमने देखा किस प्रकार हमें दुनिया पर जय पाना है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और एक पल के लिए अपने जीवन को हम जांचें। क्या संसार में हम अपना आत्मिक जीवन जब बिताते हैं हम जयवंत जी रहे हैं या पराजित जी रहे हैं? हमारे जीवन का हाल, आपके जीवन का हाल मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं। अगर आपका जीवन पराजित जीवन है, अगर आप संसार पर जय पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर से अपने सारे मन अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से प्रेम कीजिए। प्रभु जरूर आपकी सहायता करेगा कि आप संसार पर जय पाकर अपना जीवन बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आभारी है पिताजी इस धन्य समय के लिए, धन्यवाद देते हैं पिताजी आपने हमें चुना, धन्यवाद देते हैं पिताजी इस दुनिया में जयवंत से भी बढ़कर आपने हमें बनाया है। हमारी सहायता करें, आप पर विश्वास करते हुए, आपके वचन पर भरोसा रखते हुए, आपसे प्रेम करते हुए प्रभु जी अपना आत्मिक जीवन हम बिता सके, संसार पर जयवंत होकर हम जी सके, और इस प्रकार जीने के लिए आप हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और अति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं।